హరే కృష్ణ. శ్రీ ప్రభుపాద కి జయ. రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ, జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. గోపీజనవల్లభ గిరివర ధారీ, గోపీజనవల్లభ గిరివర ధారీ, యశోదానందన బ్రజన రంజన, యమునా తీరావన చారి, యమునా తీరావన చారి, యమునా తీరావన చారి, యశోదానందన Rangana Braja Jana Rangana Yashoda Nandana Braja Jana Rangana Yamuna Bira Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Sundar Bihari Jaya Radha Madhava Sundar Bihari Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare
Hare
नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की समवेद भक्त वृंद की ऑल ग्लोरिस्ट संबल डिवोटी ऑल ग्लोरिस्ट संबल डिवोटी ऑल ग्लोरिस्ट संबल डिवोटी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरिस्ट गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ज्ञानेनातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपाधान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषुभानुसुधे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा आज हम श्रीमद् भागवतम के एक ऐसे प्रसंग से चर्चा करेंगे जिसमें ये खबर होता है कि वास्तविक परम पुरुष है कौन, वो पूर्ण सत्तम भगवान है कौन। क्योंकि प्रायः हम देखते हैं कि एक हिंदू ही एक ऐसा समाज है जिसमें व्यक्ति भ्रमित हो जाता है कि किसकी उपासना की जाए, कि वो वैसा व्यक्ति है कौन जिसके अंदर रंच मात्र भी खोट नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस संसार में हर व्यक्ति उस वस्तु के पीछे तलाश में है जिसमें बताया जाता है कि पूरा संसार उस वस्तु के पीछे भाग रहा है, वही वस्तु किसके पीछे जा रहा है। आज के तारीख में सभी लोग एक ऐसे वस्तु पे ध्यान लगा रहे हैं जो वास्तविक में उचित नहीं है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरय युद्ध्यच मयि अर्पित मनोभूतिर, अपने मन बुद्धि को मुझ पे समर्पण करते हुए हे अर्जुन तुम युद्ध करो। यानी कि निरंतर उस वस्तु पर ध्यान लगाना है जो वास्तविक में ध्यान लगाने योग्य वस्तु है। तो हम सभी लोग किसी ना किसी पर तो ध्यान लगा रहे हैं, बस अंतर इतना है कि वो जो मेन ऑब्जेक्ट है वो मिसिंग है। जो वास्तविक जिसमें ध्यान लगाना चाहिए वो हट चुका है। तो कोई रूप लक्ष्मी में ध्यान लगा रहे, तो कोई धन लक्ष्मी में ध्यान लगा रहे, लेकिन ध्यान तो लग रहा है, लेकिन किस में लगना चाहिए। किसी कवि ने कहा है कि आज के तारीख में लोगों के लिए धन लक्ष्मी इतना प्रिय हो चुका है, लक्ष्मी इतना प्रिय हो चुका है कि जब दर्जी ने जब शर्ट भी सिया तो शर्ट सीते हुए भी उन्होंने जो पॉकेट जा वो पॉकेट भी बाएं तरफ बनाया, ताकि वो पॉकेट के अंदर जो धन लक्ष्मी जो रखते हैं तो वो लक्ष्मी हृदय से एकदम सटा के रहेगा, कहीं दूर नहीं निकट में ही है। तो वैसे उस लक्ष्मी जो सबके लिए प्रिय है, कितने भी बड़े तपस्वी व्यक्ति भी हो उसके लिए भी बड़ा प्रिय है, जैसे रावण। तो रावण को भी बड़ा प्रिय था, तो वैसे लक्ष्मी के लिए कौन प्रिय है। श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में जहां पर वर्णन आता है, ये लीला आती है समुद्र मंथन की। इस समुद्र मंथन में जहां पर देवतागण और असुरगण दोनों जन एकत्रित होकर अमृत निकालने की योजना में दोनों जन आपस में भेंट करते हुए एक आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, और वो क्या है, मंथन करना, और वो भी समुद्र को। तो समुद्र को मंथन करने के लिए बड़ा मंदार पर्वत की आवश्यकता थी, जो कि 1000 माइल लंबा है। तो वैसे मंदार पर्वत को उठाकर देवतागण और असुरगण दोनों जन मेहनत कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक ऐसा अमृत का प्याला मिल जाए जिसे पीकर वो अमर हो जाए। तो इतने भरपूर प्रयास किए, लेकिन उस मंदार पर्वत को भी नहीं उठा पाए। ऐसे वर्णन आता है कि कई देवतागण और असुरगण उसी के नीचे दब के कुचल गए। तो स्वयं भगवान को आना पड़ा, जिन्होंने मंदार पर्वत को उठाकर गरुड़ के ऊपर रखते हुए उन्होंने समुद्र के पास लेकर आए, और समुद्र में लाते ही उन्होंने जैसे ही रखा तो डूब सीधा डूब ही गया। अब तो उन्हें आधार के रूप में किसी को रखना होगा। तो वही भगवान कश्यप के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और वही कछुए के रूप में वो जब प्रकट हुए तो उसी कछुए के पीठ पर उस मंदार पर्वत को रखा गया। अब इस पर्वत को मंथन करना था तो मंथन करने के लिए तो रस्सी की आवश्यकता है, तो वो वसुकी जो नाग जो था उस वसुकी नाग को उस रस्सी के रूप में बनाया गया। तो यहां पर नारद मुनि ने देवतागण को कह दिया था कि आप सभी लोग वसुकी के पूंछ को पकड़ना, क्योंकि मुख के तरफ बहुत विष उगलेगा। जो वसुकी जो है वो ऐसा नाग है, मंथन करते समय बहुत विष निकलेगा, इसलिए आप पूंछ को पकड़ना। तो सीधे जाकर पूंछ मत पकड़ना, असुरों को कहना कि हम मुख के तरफ रहेंगे। तो यथा जैसे नारद मुनि ने कहा उसी रूप में उन लोग जाकर असुरों को कहने लगे कि हम सर्प के मुख को पकड़ेंगे, आप लोग पूंछ पकड़ना। तो असुर लोग आपस में चर्चा करने लगे, हम क्या इतने छोटे हैं? तो बोला नहीं, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे। तो बोला ठीक है, पकड़िए। तो सारे असुरगण मुख को पकड़े, देवतागण पूंछ को पकड़े, अब मंथन शुरू किया। अब उस मंथन में बहुत से विष निकलते गए। तो ऐसे वर्णन है कि किस प्रकार उसके अंदर अनेक अनेक प्रकार के वस्तुएं निकले। ऐरावत हाथी निकला, घोड़ा निकला, मणि निकला, बहुत से स्वर्ण वस्तुएं निकले। तो अलग अलग अप्सराएं निकले, सभी लोग अपने अपने हिस्से को उसमें से ले लिए। तो जब जहर उसमें से निकले तो सब डर गया, तो सब कहने लगे ये मेरा हिस्सा नहीं है। तो स्वयं शिव जी आकर उस जहर को उन्होंने पान किया और अपने कंठ में उन्होंने धारण किया। कोई तो कोई कवि कोई इस प्रकार आचार्य ये भी कहते हैं कि शिवजी ने कंठ में इसलिए धारण किया क्योंकि शिवजी सोच रहे थे कि मेरे हृदय में गोविंद विश्राम कर रहे हैं, तो कहीं ये जहर पीकर कहीं मेरे गोविंद को कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। तो वैसे शिवजी पूरे समर्थ थे उस जहर को पीने के लिए। ऐसे नहीं कि जहर पी लिया तो शिवजी भी मृत्यु को प्राप्त करते, नहीं। शिवजी ने अपने गोविंद की रक्षा के लिए उन्होंने जहर को अपने कंठ तक धारण किया। तब इस प्रकार आगे वर्णन आता है कि उसी हलाहल विष से उनको जब उन्होंने शिवजी ने जब ग्रहण किया तब उसके बाद फिर मंथन किए, तब बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि किस प्रकार एक सुंदर रमा देवी स्वयं माया देवी जो कि रमा देवी उस समुद्र से प्रकट होती है। ऐसा वर्णन है कि जैसे कि हिमालय में सूर्य किरण प्रकाशमान हो रहा है और इस प्रकार चमचमा रहा है, पूरे वहां पर जितने भी बड़े बड़े देवतागण थे सभी मोहित हो गए उस रमा देवी लक्ष्मी जी के सुंदर स्वरूप को देखकर। तो आगे वर्णन आता है कि किस प्रकार सारे बड़े बड़े महापुरुष लोग लाइन में खड़े थे लक्ष्मी जी को अपना धर्म पत्नी बनाने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर इस भौतिक जगत में लोग लक्ष्मी के पीछे भाग रहे ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े बड़े देवतागण भी मोहित हो जाते हैं इस लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए। जैसे एक बार वर्णन आता है कि एक बार लक्ष्मी जी को अपने ऊपर बड़ा गर्व हो गया, तो लक्ष्मी जी कहने लगी नारायण को कि देखिए मैं कितनी श्रेष्ठ हूं, तुम्हें जानना है मेरी कीमत कितनी है। लक्ष्मी जी बता रहे नारायण को, तो बोले ठीक है बताइए। तो वहां पर एक मैयत जा रहा था, तो उस मैयत में सभी लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे राम नाम सत्य है, तो लाश लेकर जा रहे थे ऐसे चिल्ला चिल्ला कर। उसी बीच में लक्ष्मी जी ने स्वर्ण मुद्राएं वहां पर फेंक दी है, और जैसे स्वर्ण मुद्रा वहां पर चारों तरफ जब सड़क पर गिरा तो सब लगे बटोरने के लिए लाश को भी एक तरफ फेंक दिया, सब जेब भर रहे हैं। अब ये देखकर तो सभी लोग दंग रह गए कि ये क्या हो रहा। लक्ष्मी जी कहने लगी देखे, तो नारायण कहने लगे कि क्या तुमने ये नहीं देखा कि वहां पर सभी लोग सोने के सर्पिया बीन रहे थे लेकिन एक व्यक्ति नहीं रहा था। मतलब कौन? वो जो मरा हुआ व्यक्ति जो लाश था। बोले क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो मूल जो श्रोत्र मैं जो निकल चुका हूं, इसलिए वो लक्ष्मी भी नहीं बीन सकता। तो वैसे लक्ष्मी जी को भी पता लग गया कि मुझसे भारी नारायण स्वयं है। तो वैसे लक्ष्मी जी अब स्वयं निकली है अपने वर को ढूंढने के लिए, तो हाथों में वरमाला लेकर चल रही है। तो अलग अलग महापुरुष उनके समक्ष खड़े थे और अलग अलग पुरुषों के अंदर अलग अलग कमियों को खोजती है लक्ष्मी जी। तो बताते हैं नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जय ज्ञानम क्वचित तत्क्षण संग वर्जितम कश्चिन महातस्य न काम निर्जय स ईश्वर किम परतो व्यपाश्रया। तो कहते हैं नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जय, तो उन्होंने देखा कोई व्यक्ति बड़ा तपस्वी है। नूनम तपोयस्य न मन्यु निर्जय, लेकिन अपने जीवन में क्रोध को वशीभूत नहीं किया। बड़ा तपस्वी है जैसे दुर्वासा मुनि, बड़े तपस्वी है। दुर्वासा, दुर्वासा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वासा यानी कि वस्त्र, संस्कृत में वासा यानी कि वस्त्र, दूर यानी कि ठीक से नहीं। तो दुर्वासा मुनि जिनके शरीर में एक भी वस्त्र नहीं है, तो अगर उनको कह दिया जाए कि नग्न करके कह दिया जाए तब तो फिर दुर्वासा मुनि का तो श्राप गिर जाएगा। तो टू बी इन अ सेफर साइड क्या कहते हैं, दुर्वासा, ठीक से कपड़े नहीं डाले लेकिन दुर्वासा। तो वैसे दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी, अंग में एक भी कपड़ा नहीं, लेकिन जब उनके अहंकार को ठेठ पहुंचता है तो तुरंत श्राप दे देते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के समक्ष दुर्वासा मुनि जैसे आए, जब अम्बरीश महाराज ने जब दुर्वासा मुनि को जब आमंत्रण किया था, तो उस द्वादशी के समय पर एकादशी के पारण को रहने के लिए कुछ क्षण देरी हुए, तो वहां पर दुर्वासा मुनि जैसे आगमन हुए तो उन्हें क्रोध आ गया। तो उन्होंने अपनी जटा से एक भयंकर असुर को प्रकट किया अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो दुर्वासा मुनि इतने बड़े तपस्वी लेकिन क्रोध को वशीभूत नहीं किया। जैसे दूसरा उदाहरण उन्होंने देखा विश्वामित्र मुनि, विश्वामित्र मुनि को उन्होंने देखा, लक्ष्मी जी ने विश्वामित्र मुनि भी इतने बड़े तपस्वी, उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या किया। तो उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने उन्होंने मेनका को भेज दिया। जब मेनका के पायल की आवाज जब नहीं पड़ा तो विश्वामित्र मुनि जो कि इतने बड़े तपस्वी इतने युग पर्यंत तक तपस्या कर रहे थे, आंखें बंद करके एक वस्तु भी नहीं देखा, लेकिन जब पायल की आवाज आई तो वो अपने ध्यान से भंग हो गए। अब विश्वामित्र मुनि ने ऐसा भी नहीं सोचा कि कोई मंदिर का घंटी बज रहा है, नहीं, उनका तुरंत ही चित्त वहां से विलग्न हो गया और विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या से गिर पड़े काम के शिकार के कारण। फिर वापस विश्वामित्र मुनि वापस तपस्या में बैठ गए, आसन लगाकर पछतावा करते हुए जब वापस बैठे तो 60,000 वर्ष के बाद पुनः एक अप्सरा को इंद्र ने भेजा, अब उससे सुंदर अप्सरा रमा देवी। अब जब वापस आया तब विश्वामित्र मुनि समझ गए ये वही इंद्र का चाल है। इतने क्रोधित हो गए विश्वामित्र मुनि की अपनी दृष्टि को क्रोधावेश में उन्होंने जब दृष्टि को खोला और उस दृष्टि से उन्होंने भयंकर अग्नि को प्रकट किया जिस अग्नि से उन्होंने उस रमा देवी को जलाकर भस्म कर दिया। फिर से विश्वामित्र मुनि पछताने लगे, हाय हाय, पहले मैं गिर पड़ा काम के कारण, दूसरी बार गिर पड़ा क्रोध के कारण। तो यहां पर लक्ष्मी जी कह रही है बड़े तपस्वी लेकिन क्या काम का, क्रोध को वशीभूत नहीं किया तो ये परिपूर्ण व्यक्ति नहीं है। फिर वो आगे जाती है, तब वो आगे जाकर क्या देखती है, तो देखती है ज्ञानम क्वचित्त क्षण संग वर्जितम। ये तो बड़े ज्ञानी हैं, बहुत वेद को जानते हैं, पूरे शास्त्र को जानते हैं, न संग वर्जितम, लेकिन हृदय में आसक्ति को नहीं छोड़ा। हृदय के अंतर्गत जो विषयों के प्रति जो विरक्ति है उसको उन्होंने उत्पन्न नहीं किया। तो कौन था, शुक्राचार्य। तो यहां पर लक्ष्मी जी ने देखा शुक्राचार्य इतने बड़े वेद अध्ययन इतने बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन क्या फायदा। स्वयं शुक्राचार्य ने जब बलि महाराज को उपदेश दे रहे थे, जब वामन देव आए थे उस समय उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए, तो यहां पर शुक्राचार्य कहते बलि महाराज को कि देखो ये स्वयं हरि है, सब कुछ तुम्हारा हर लेगा, केवल 3 कदम में, 2 ही कदम में तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा और कहेगा 3रा कदम कहां रखो। शुक्राचार्य इतने बड़े ज्ञानी थे कि वो जानते थे कि स्वयं भगवान, ये स्वयं भगवान है और भगवान का भविष्यवाणी भी कर लिए थे। अब भगवान का भविष्यवाणी करने वाला कितना बड़ा ज्ञानी होगा, इतने बड़े ज्ञानी थे लेकिन उनका ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान से विषयों के प्रति उन्होंने विरक्ति उत्पन्न नहीं किया। तो वैसे तथाकथित जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी काम का नहीं, इसलिए बताया जाता है यथा भारत यथा खर चंदन भार वाई भारत से वेदा नत चंदन से। बताया जाता है कि जिस प्रकार गधे के पीठ में जब चंदन का ढेला जब डाल दिया जाता है तो गधे को पता नहीं है कि चंदन का कीमत क्या है, चंदन कितना उपयोगी वस्तु है वो नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि चंदन का वजन बहुत है। चंदन का वजन पता है, चंदन की कीमत नहीं पता। येतानि बहूनि शास्त्राणि, इसी प्रकार शास्त्रों के कई ज्ञान कई श्लोक उसे पता है, लेकिन उस ज्ञान को कैसे जीवन में उतारना है, उसको उपयोग कैसे करना है, ये उसका ज्ञान नहीं है। तो वैसे तथाकथित जो ज्ञान है वो ज्ञान किसी काम का नहीं। जैसे पुराणों में बताया जाता है वेदान विहीनश्च पठन्ति शास्त्रम, ಶಾಸ್ತ್ರೇಣ ಹೀನಶ್ಚ ಪುರಾಣ ಘುಯ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಹೀನಶ್ಚ ಕೃಷ್ಣೋ ಭವಂತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾತ್ ತೇ ಭಾಗವತಾತ್ ಪಠಂತಿ. ತೋ ಬತಾತೆ ಹೇ ವೇದಾನ್ ವಿಹೀನಶ್ಚ, ಅಗರ್ ಕೋಯ್ ವೇದ ನಹೀ ಪಡ್ ಸಕ್ತಾ ತೋ ಕೋಯ್ ಬಾತ್ ನಹೀ, ಪುರಾಣ ಹೀನಶ್ಚ. ಅಗರ್ ಕೋಯ್ ವೇದ ನಹೀ ಪಡ್ ಸಕ್ತಾ ತೋ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಪುರಾಣ ಪಡೋ. ತೋ ಪುರಾಣ ಮೇ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ಕಹಾನಿಯಾ ಹೈ, ಜಿಸ್ ಕಹಾನಿಯೋ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಮನ್ ಬಹಲ್ ಜಾಯೇಗಾ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ. ಅಗರ್ ಕೋಯ್ ಪುರಾಣ ಭೀ ನಹೀ ಪಡ್ ಸಕ್ತಾ ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ವೋ ಭಾಗ್ ವೋ ಕೃಷಿಣೋ ಭವಂತಿ, ಕಿಸಾನ್ ವೋ ಖೇತಿ ಬಾಡಿ ಕರ್ನಾ ಶುರು ಕರ್ ದೋ. ಅಗರ್ ವೋ ಖೇತಿ ಬಾಡಿ ಭೀ ನಹೀ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ತಬ್ ಫಿರ್ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಭಾಗವತಾತ್ ಪಠಂತಿ, ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಉಪರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ದೇನಾ ಶುರು ಕರ್ ದೋ. तो वैसा शास्त्रों में बताया गया है कि इन सारे विधियों से भगवान प्राप्त नहीं होते. श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि लोग कहते सप्ताह भागवत सप्ताह, तो कि भागवत सप्ताह ही नहीं है, नित्यम भागवत सेवया. लेकिन लोग कहते सात दिन सप्ताह हुआ बस, आठवां दिन सो जाएंगे. तो वो जो भागवत द्वितीयम भागवत सेवया कहा गया है, केवल सप्ताह भागवत सेवया नहीं कहा गया. एक बार एक व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, वो गांव में प्रवचन करने के लिए आया. इसी प्रकार सात दिन का सप्ताह था, तो उस सात दिन के सप्ताह में कई लोग आकर बैठे थे. तो वहां पर एक बूढ़ी महिला भी आकर बैठी थी, और ये जब भी प्रवचन करते थे तो वहां पर वो बूढ़ी महिला आंखों से अश्रुधारा बहाती थी और रोती रहती थी. तो ये देखकर तो ये बड़ा खुश हो गया. पूरा सात दिन प्रवचन किया पूरा उत्साह के साथ, और सातवें दिन जब प्रवचन खत्म होने के बाद सोचा कि जरा मैं उस बूढ़ी महिला से तो मिल लूं. तो ये गया, ये वक्ताकार गया उनके पास और उनसे जाकर पूछा कि मैं जब प्रवचन कर रहा था कि तब मैं आपको देख रहा था कि आप भाव विहोर में अपने आंखों से अश्रुधारा बहा रही हैं, ऐसा मेरा प्रवचन में कौन सी बात आपको हृदय में लग गई कि आप रो रही थी, जरा मुझे भी बताइए. तो ये कहने लगी कौन सा रोना, कौन सा सप्ताह. बोले अरे अभी तो आप तो, मैं तो देख रहा था सात दिन लगातार आप रो रही थी जब प्रवचन कर रहा था. तो बोला अच्छा, वो ऐसी बात है कि हाल ही में मेरे पास एक बकरा था और वो बकरे की मृत्यु हो गई, और जब आप प्रवचन करते थे तो आपकी दाढ़ी जब यूं यूं हिलती तो मुझे मेरे बकरे की याद आती थी. तो पूरा प्रवचन बैठकर वो बकरे के बारे में सोचती थी. तो वक्ताकार कुछ कह रहा, श्रोता अपने धुन में है, और सब वैसा जो ज्ञान, उस ज्ञान का क्या लाभ. इसलिए कहा गया है ज्ञानम क्वचित तत्क्षण संगवर्जितम कश्चिन महतस्य न काम निर्जय. तो कोई व्यक्ति उन्होंने देखा आगे जाकर, जो कि इतने बड़े पदवी में है लेकिन अपने जीवन में काम को वशीभूत नहीं. कश्चिन महतस्य, बड़े पोस्ट में बैठा हुआ है लेकिन काम का शिकार हो गया. तो उन्होंने देखा स्वयं ब्रह्मा जी, वो स्वयं काम से शिकार हो चुके थे. तब वो समझ गई कि ये भी परिपूर्ण नहीं है. फिर लक्ष्मी जी फिर आगे बढ़ती हैं. तो आगे क्या देखती है, स्व ईश्वर किम परतो वे पाश्रया। तब उन्होंने देखा कोई बड़े ईश्वर के पद बैठा हुआ है, लेकिन अपनी पत्नी को कैसे देखभाल करना ये इसे पता नहीं। कौन? स्वयं इंद्रदेव। इंद्र इतने बड़े ईश्वर के पदवी में बैठा हुआ है, लेकिन अपनी अर्धांगनी अपनी पत्नी को किस प्रकार संरक्षण करना है ये उन्हें पता नहीं। जब असुरों ने जब आक्रमण किया स्वर्ग में, तो इंद्र ऐसे भाग गए और असुर लोगों ने इंद्र की पत्नी को कैद करके रख लिया था। इंद्र तक अपनी पत्नी का रक्षा प्रदान नहीं कर पाया। तो यहां पर लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ऐसे पति को मैं क्यों लूं जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो आगे जाती है, तो आगे जाती है तो वो क्या देखती है, धर्म क्वचित तृण भूत सहूर्दम त्यागे क्वचित तृण मुक्ति कारणम। तो उन्होंने देखा एक बहुत ही धर्म का आचरण करने वाला है, धर्म के आचरण में थोड़ा भी खोट नहीं है, न सहूर्दम लेकिन हृदय में किसी भी प्रकार की दया नहीं है। न सहूर्दम कौन? स्वयं परशुराम। तो स्वयं परशुराम जो थे इतने धर्म के आचरण में इतने एकनिष्ठ थे, लेकिन उनके अंदर दया की भावना नहीं थी। बताया जाता है जब जमत अग्नि जो कि परशुराम के पिता जब यज्ञ हवन किया करते थे, तब उस समय उनकी जो पत्नी थी रेणुका यानी कि परशुराम की माँ, तो परशुराम की माता जो थी वो जब यज्ञ हवन करने के लिए पानी लेने के लिए जब तालाब में जाती थी, तो केवल घड़ियाल में ही कलसी कलसी पानी भरकर लाती थी। उनके पास एक ऐसा घड़ियाल हुआ करता था जिस घड़ियाल में वो कई कलसी भरकर पानी ले लेती थी। और ये उनके पास शक्ति कहाँ से आई थी, क्योंकि रेणुका जो थी इतनी पतिव्रता थी कि जिस पतिव्रता की शक्ति से वो ये कार्य कर पाती थी। एक समय की बात थी जब रेणुका जब पानी भरने के लिए जब गई तालाब में, तब उसी समय उन्होंने इंद्र को देखा, इंद्र के पीछे के बाल को जो कि स्वर्ण कलर के बाल जब चमचमा रहे थे, तो रेणुका माता देखते ही एक क्षण के लिए उनका जो चित्त था वो अपने पति से विलग हो गया। और उसी समय उनके पति व्रता का जब भंग हुआ, तब यहां पर रेणुका खूब प्रयास कर रही थी घड़ियाल में पानी भरने के लिए, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा था, सब सर करके बह जा रहा था। तो इसी कारण से काफी समय लग गया उन्हें पानी लाने के लिए। तो बहुत समय के बाद जब उन्होंने पानी लाया, जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो जब बहुत समय के बाद उन्होंने जब उस कलसी भरकर जब पानी लाए जमत अग्नि के पास, तो जमत अग्नि समझ गए कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तो जमत अग्नि ने अपने पहले पुत्र को कहा कि देखिए अपने माँ का गर्दन धर से अलग कर दो। तो ये तो सुनते ही वो विचलित हो गया। तो पहला पुत्र ने तो नकार दिया, दूसरे को कहा कि अपने माँ के सर को धर से अलग कर दो, उन्होंने भी हाथ ऊंचा कर दिया। तीसरे को कहा, उन्होंने भी नकार दिया। तो चौथे को कहा परशुराम, तो परशुराम ने कहा हाँ पिताजी मैं जो कहूंगा तुम करोगे? हाँ पिताजी मैं धर्म का आचरण करने वाला पुत्र हूं, जो आप कहोगे वो मैं निश्चित करूंगा। तो अपनी मां का और अपने भाइयों का सभी का तुम गर्दन काट दो। परशुराम ने ही एक ही वार में उन्होंने चारों का सर धर से अलग कर दिया। तो जब चारों का शीश उन्होंने जब काट दिया तो ये देखकर जमत अग्नि बड़े प्रसन्न हो गया। जमत अग्नि ने कहा, परशुराम मैं तुम्हारे इस कार्य से अति प्रसन्न हूं, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इन्होंने कहा, पिताजी मुझे ऐसा वर दो कि ये मेरी माता मेरे भाई वापस जीवित हो जाए, लेकिन ऐसा जीवित होना कि इन लोग को याद ना रहे कि मैंने इनको मारा था। नहीं तो याद रहेगा तो हमेशा वही नजर से देखते रहेंगे। तो वैसे जमत अग्नि को उन्होंने प्रसन्न कर दिया। तो लक्ष्मी जी ने देखा परशुराम बहुत धर्म का आचरण करने वाले, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि हृदय के अंदर दया माया ही हट गया। तो उन्होंने उनको भी पसंद नहीं कहा। तब उन्होंने क्या देखा, त्यागस क्वचित क्षण संग वर्तितम, त्यागस क्वचित तत्र न मुक्ति कारणम। तो उन्होंने देखा कुछ लोग बड़े त्यागी हैं, लेकिन त्यागी तो है लेकिन हृदय में मोक्ष प्राप्त करने की कामना नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने भी कहा ये भी सही नहीं है, मैं दूसरे को देखूंगी। तो लक्ष्मी जी ने दूसरे को देखा, तो दूसरे को देखा तो वीर्यम न पुंसो अस्ति अजवेग निष्कृतम। तो उन्होंने देखा बहुत वीरवान है, बहुत बलशाली है, लेकिन काल के चक्र उनके सर पर मंडरा रहे हैं, कभी भी उनका हरि बोल हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी जी सोची कि यह भी उचित नहीं है, मैं किसी और को देखती हूं। नहीं द्वितीय गुण संग वर्जित। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग बड़े अच्छे गुणवान हैं, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत फंसे हैं, तो मैं इसे भी क्यों अपना पति बनाऊं। तो लक्ष्मी जी ने उसे भी तिरस्कृत किया। फिर आगे गई तो आगे कौन मिले, क्वचित चिरायुर नहीं सील मंगल, क्वचित तथापि अस्ति न वेद्यमायुष, यत्र भयं कत्र च सो अपि अमंगल, सुमंगल कश्च न कांक्षते हिमाम। तो वो जब आगे गई तो उन्होंने क्या देखा, क्वचित चिरायुर बहुत आयु धारण कर वाला एक व्यक्ति है, उसकी मृत्यु भी अकस्मात नहीं लिखी गई है, बहुत दीर्घ काल तक जिएगा, लेकिन क्या समस्या है, वो अपने ही दुनिया में है। अगर मैं उनके पास जाऊंगी भी तो भी वो अपनी ही दुनिया में रहेगा, तो फिर मुझे कौन प्रेम करेगा। कौन था, लोमश ऋषि। अब लोमश ऋषि कच्चित चिरायुर, कितने आयु तक उनकी आयु के विषय में चर्चा की जाए तो बताया जाता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जो कि यहां पर सत्य त्रेता द्वापर कली, ये जो चतुर्युग कलयुग 432,000 उसका दुगना द्वापर युग, और कलयुग का तीन गुना त्रेता युग, कलयुग का चार गुना सतयुग, ये जब चारों को मिला दिया जाए, ये चतुर्युग, इसको जब 1,000 बार फिराया जाए, तो ये चतुर्युग जब 1,000 बार फिरता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और एक दिन में भी कौन सा 12 घंटा होता है, ऐसे 12 घंटा रात। वैसे ब्रह्मा जी, वो ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, यानी कि अभी के जो ब्रह्मा जी की आयु है
51 साल का पहला दिन 28वां चतुर्युग चल रहा है, यानी कि अभी ब्रह्मा जी का बर्थडे चल रहा है, हैप्पी बर्थडे चल रहा है ब्रह्मा जी का, पहला दिन चल रहा है जिसके अंदर 28वां युग साइकिल चालू है। वैसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, और एक ब्रह्मा जी, जब एक ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो लोमश ऋषि के अंग से एक केस टूट के गिरता है, उनके शरीर से एक रोम टूट के गिरता है। तो एक समय वही लोमश ऋषि समुद्र के निकट में खड़े रहकर जप कर रहे थे, तो उसी समय स्वयं नारद ऋषिवर आ गए। तो नारद मुनि कहने लगे, इतने कड़ी धूप में तुम इस प्रकार भजन कर रहे हो, कुछ कुटिया वगैरह बना के क्यों नहीं भजन कर लेते हो? तो लोमश ऋषि कहने लगे, कुटिया बनाने के पीछे मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं, वो समय में मेरा एक माला एक्स्ट्रा हो जाएगा, और वैसे भी कितना साल जीना है, बहुत छोटा जीवन है। अब कौन कह रहा है? लोमश ऋषि। अगर लोमश ऋषि के शरीर के सारे अंग के रोम जब गिर जाएंगे तब लोमश ऋषि की मृत्यु होगी, यानी कि सैकड़ों ब्रह्मा की मृत्यु के बाद, और वही लोमश ऋषि कह रहे कि कितना दिन जीना है। और यहां पर हमारा मुश्किल से 70-80 तक कोई पहुंचता है, 40 साल में ही विकेट गिरना शुरू होता है, और उसमें भी व्यक्ति कितने उमंगे हैं। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं कि इस संसार में लोगों की जीने की आयु कितनी है। चलो मान लो कोई 100 साल जीता है, 100 साल में से आधा समय तो सोने में चला गया, 100 में से आधा घटा दो 50 बचा, अब 50 में से तो 10 साल तो केवल बाल अवस्था में चला गया, तो 50 में से 10 गया 40 बचा, अब 40 में से और 10 साल तरुण तरुणी के विषय में सोच के गवा दिया, अब बचा कितना 30 साल, अब वो 30 साल में 20 साल तो उनके घर गृहस्थी में ही निकल गए, बीबी के लिए साड़ी लाना, घर के सिलेंडर के लिए लाना, लाइन लगाना, बच्चों का फीस भरना, अड़ोस पड़ोस के निमंत्रण को सुनना, अगल बगल के पार्टी में जाना, शादी विवाह में जाना, डॉक्टर के इधर लाइन लगाना, उसी में उसका 20 साल निकल गया, अब बचा कितना 10 साल तो उनका बुढ़ापे में खांसते खांसते निकल जाएगा, अब बताओ वो भजन कब करेगा, इतनी छोटी आयु है। लेकिन तत्पर भी वो सोच रहे हैं हम होंगे कामयाब एक दिन, लगे हैं। तो लोग अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं, लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन वास्तविक क्या आपने सोचा है 50 साल के बाद मेरा करियर क्या होगा? वास्तविक करियर बनाना है तो इसे कहते हैं जो आगे के विषय में ठीक ठीक सोचते हैं। लोग करियर कितना साल तक बनाते हैं? केवल 60-70 साल का ही करियर बनाने के विषय में चिंता में डूबे हैं, लेकिन उसके बाहर ब्लैंक, कुछ पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ मालूम। तो वैसे स्वयं लोमश ऋषि वो भी अपनी ही धुन में है, भगवान के भजन में लगे हुए। तो यहां पर लक्ष्मी जी विचार करने लगी, ये भी सही नहीं है, मुझे किसी और को खोजना पड़ेगा। तो वो आगे जाती है तो कौन दिखता है? क्वचित तथापि अस्ति न वेद्यम आयुष। कुछ बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े धनी व्यक्ति हैं, बड़े ऐश्वर्यवान हैं, अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह रख सकते हैं, लेकिन आयु का कोई ठिकाना नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने कई, जैसे कि उदाहरण के रूप में, जैसे रावण अपनी पत्नी को कितनी अच्छा रखता था, रावण अपनी सारी पत्नी को बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था, लेकिन रावण वही मूर्ख रावण ये नहीं पता कि उसकी आयु बड़ी छोटी थी और राम के द्वारा मारा गया। तो यहां पर लक्ष्मी जी देख रहे कि ऐसे प्रकार के तपस्वी व्यक्ति तो है लेकिन आयु का कोई गारंटी नहीं है। फिर आगे क्या देखती है, यत्र भयंकर न च अपि अमंगल। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत साल जी सकता है, इसकी आयु का तो कोई ठिकाना नहीं, इतने वर्ष तक जी सकते हैं और यहां तक कि अपनी पत्नी का भी अच्छी तरह देखभाल कर सकते हैं। वो कौन था, स्वयं शिव जी। स्वयं शिव जी अपनी पत्नी का भी अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और दीर्घ काल तक जी सकते हैं, लेकिन वही शिव जी की अवस्था क्या था, अमंगला। उनका वेशभूषा कुछ लुभावना वाला रूप नहीं है, गले में सर्प लटकाया, बिच्छू वगैरह लटकाया हुआ है। भले ही पत्नी को गोद में बिठा के प्रवचन देता होगा लेकिन रूप मंगल नहीं है, अमंगल है। ऐसे पुराणों में वर्णन आता है कि स्वयं शिव जी का भी जो वेशभूषा था वो वैष्णव के समान था। स्वयं शिव जी भी ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगवाया करते थे। तो हुआ क्या कि अब शिव जी किनके नाते, सारे भूत प्रेतों के नाते, भूतनाथ। तो सारे भूत प्रेत लोग, उन लोग सभी लोग एक साथ उन्होंने आक्रमण किया स्वर्ग में और स्वर्ग में ऐसा दंगा मचा दिया कि स्वर्ग के सारे जितने भी देवतागण थे सबको वहां से हकाल दिए। सारे देवतागण सब वहां से बेरोजगार हो गए। तो बेरोजगार की समस्या स्वर्ग में भी है और वहां पर सब धर धर भटकने लग गए, इंद्र इत्यादि। किसी को कोई सहारा नहीं मिला तो भटकते हुए स्वयं नारायण के पास आए और कहने लगे कि आप कुछ करिए, इन लोगों को तो हम सामना नहीं कर सकते, बड़े बलशाली हो गए। तो नारायण ने कहा चिंता मत करो, मेरा चक्र काम सब कर लेगा। तो नारायण ने चक्र को भेजा, चक्र जाओ। तो चक्र आया, सुदर्शन चक्र आया स्वर्ग में, सबका दर्शन किया, यू टर्न मार के चला गया। तो नारायण ने पूछा सुदर्शन को, क्या तुमने मेरा कार्य किया? तो सुदर्शन चक्र कहने लगे मैं कैसे करूं, वहां पर जितने भी स्वर्ग में जितने लोग बैठे हैं सब विष्णु चिन्ह लगाकर बैठे हैं, मैं किसको स्पर्श करूं? तो नारायण समझ गए, ओ ये सारा समस्या का मूल जड़ यहां शिव जी बैठे इसके कारण से। तो नारायण ने कहा शिव जी, तो शिव जी ने कहा यस बॉस, ऐसे कुछ कहा होगा। तो आज के बाद ये तुम्हारा वेशभूषा नहीं चाहिए, आज के बाद ये कंठी वगैरह निकाल दिया जाएगा और क्या एक असुर रूप को धारण करिएगा, अमंगल रूप को धारण करिएगा। तो शिव जी कहने लगे लेकिन मेरी भक्ति का, उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे भक्ति का संरक्षण मैं स्वयं करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें एक मायावाद का सिद्धांत भी लिखना है और तुम स्वयं जाकर उसे लिखोगे। तब स्वयं शिव जी, उन्होंने नारायण की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने कंठी को उठा के सर्प लटका दिया, ऊर्ध्व पुंडर लगाने के बजाय ऐसे तिलक लगा दिया हॉरिजॉन्टल। बहुत से लोग दिखाई देंगे ऐसे तिलक वाले, तो समझ जाने का ये शिव के गण वाले, जो जिसकी गति ऊपर की ओर होती है वो ऐसे तिलक लगाते हैं, ऐसे नहीं, यानी कि यही फंसने वाले हैं। और चारों तरफ बिच्छू लटका दिए और किसी जानवर के खाल को पहन लिया। अब शिवजी आसन लगाकर बैठ गए त्रिशूल के साथ। तो जितने भी भूत गण थे उनको सुनाई पड़ा कि हमारे सरकार ने वस्त्र बदल दिया है, मार्केट में नया फैशन आया है, तो बोला अरे वाह ये कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। तो सब तैयार, सब के सब जितने भी आभूषण थे वैष्णव के तिलक वगैरह सब छोड़ दिया और सभी लोग उसी प्रकार नकल करने लगे जो हमारा सरदार ने किया है। बहुत सर्प वगैरह सब लटका कर उन लोग भी इसी प्रकार भस्म वगैरह लगाना शुरू कर दिया। अब नारायण ने कहा चक्र को अब जाओ, अब जाकर तुम काम पूरा करो। तो जब ना चक्र आया स्वर्ग में जितने भी भूतगण थे सबके गर्दन को ध्वंस कर दिया। तो इस प्रकार चक्र भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकता जिसने विष्णु के तिलक को लगाया है। तो वो जो तिलक जो है इतना शोभायमान है, जब व्यक्ति जब तिलक लगाते हैं तो वो कहते हैं ओम ललाटे केशवाय नमः। केशवाय नमः यानी कि जिन्होंने केशी नामक असुर का वध किया है वो है केशव। तो जब केशी नामक असुर घोड़े का रूप धारण करके बड़े जोर से आया था बड़े अहंकार के साथ कृष्ण को मारने के लिए, तो कृष्ण ने अपने हाथों को लोहे के जैसा इतना गर्म कर दिया और सीधे उनके मुख में डाला, सीधे वो छटपटा कर वहीं पर ही गिर पड़ा। तो वैसा जो केशव के तिलक को जब हम धारण करते हैं तो हमारे सामने भी ऐसे नास्तिक प्रकार के केशी नामक के घोड़े बहुत जोर से बर्फ पड़ने के लिए आएंगे और सीधे बरसने के लिए हमारे सामने आएंगे, केवल तिलक देखते वो आधा तो ठंडा ही हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा तिलक। तो तिलक में ऐसी शक्ति है कि नास्तिकों के हृदय को भी शुद्ध कर देता है। तो वैसा यहां पर जो स्वयं शिव जी ने उन्होंने ऐसे सुंदर आभूषण को छोड़कर उन्होंने अमंगल रूप को धारण किया और साथ ही साथ में अशास्त्र का रचना किया। असत शास्त्रम पद्म पुराण में यही वर्णन आता है जहां पर पार्वती शिव जी को जब प्रश्न करती है कि चांडाल कौन है ये कैसे पता लगाया जाए, तो शिव जी कहते हैं चांडाल वो है जो गले में सर्प लटकाता है, भस्म लगाता है, शरीर में बिच्छू को लेके घूमता है, खोपड़ी की माला पहनता है। तो पार्वती दंग रह गई, ये तो सब मैं अपने पति में देख रहा हूं। तो शिव जी कहने लगे मेरा पहला अच्छा आभूषण था लेकिन नारायण के कहने के अनुसार मुझे ऐसे आभूषण को धारण करना पड़ा और मैंने ही नारायण की आज्ञा से मायावाद का सिद्धांत लिखा। तो कहते हैं मायावादम असत शास्त्रम प्रचन्नम बौद्धम उच्यते मैव विहितम देवी कलो ब्राह्मण मूर्तिना। हे देवी मैं स्वयं कलयुग में आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होऊंगा, कलो ब्राह्मण मूर्तिना, और मैं आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर मैं झूठा शास्त्र ये लिखूंगा कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, भगवान निराकार है, इस बात को मैं सिद्ध करूंगा। इसलिए जितने भी व्यक्ति जो कहते हैं कि भगवान निराकार है तो समझना चाहिए सब शिव जी के चेले हैं। वही भूत गणों में ये भी एक गण है। तो इस प्रकार शिव जी ने ऐसे झूठा शास्त्र लिख कर उन लोगों को धिक भ्रमित कर दिया और उन लोगों को एकत्रित कर दिया। इस तरह शिव जी कहते हैं पार्वती को कि मेरा भी ऐसे अमंगल रूप मैंने धारण किया नारायण की आज्ञा को लेकर। तब यही रूप को लक्ष्मी जी देखकर हैरान हो जाती है, इतना अमंगल रूप मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और को देखूंगी। तब उन्होंने क्या देखा, सुमंगल कश्च, एकदम ही सुमंगल, इतने अच्छे गुण भरे हुए हैं, चीर आयु, उसके आयु का तो कोई समाप्ति नहीं है, सनातन काल तक जिएंगे, जो स्वयं आदि पुरुष है और वैसे स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण, वो वास्तविकता में वर के योग्य है। तो जब लक्ष्मी जी ने इनकी इस प्रकार सुंदरता को देखा तो लक्ष्मी जी दंग रह गई। लेकिन लक्ष्मी जी ने भी उसमें एक खोट निकाला। तो लोकाधक्ष प्रभु यही बता रहे थे कि किस प्रकार आज के तारीख में लोगों के अंदर गलतियां ढूंढने की कितनी आदत है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके अंदर लक्ष्मी जी ने खोट निकाल लिया। क्या खोट निकाला? कि मेरे पीछे पूरा संसार पागल है और मैं इनके पीछे पागल हूं, लेकिन एक नजर भी मुझे नहीं देख रहे। तो वैसे अगर किसी की गलतियां भी निकालता है तो चिंता मत करिए, भगवान के ऊपर भी लोगों ने आक्षेप लगाया हुआ है, तो हम क्या चीज है। तो वैसे स्वयं लक्ष्मी जी समझ गई कि कोई पूजनीय व्यक्ति कोई है तो स्वयं नारायण है। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में अपना वरमाला डाला। और इससे यह सिद्ध होता है कि जो पूरा जो संसार जिसके पीछे भाग रहा है, वो वस्तु, वो जो लक्ष्मी जी, वो किसके पीछे मोहित है? वो है स्वयं नारायण। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक कोई पूजा करने या ध्यान लगाने कोई व्यक्ति है तो वह है नारायण। इस प्रकार इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसे हर क्षण हर पल हमें अगर अपने चित्त को एकाग्र करना है तो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध्यच। हे अर्जुन, सभी स्थिति पर, सभी हर घटनाओं पर, हर कदम पर मेरा ही स्मरण करना। इसलिए प्रभुपाद उदाहरण देते, कैसे, जिस प्रकार उदाहरण देते, जैसे कि कछुआ जो होता है, कछुआ सरोवर के अंदर तैरता है और सरोवर के अंदर तैरने के साथ साथ वही कछुआ जो अपने अंडे को सरोवर के बाहर दिया हुआ है, वो किनारे में वो अंडे को छोड़कर वही कछुआ तालाब के अंदर तैर रहा है और वो अपने अंडे का संरक्षण करता है। कैसे? केवल स्मरण शक्ति से। केवल कछुआ अपने स्मरण शक्ति से अपने अंडे को संरक्षण करता है, उनको देखभाल करता है। जिस स्मरण शक्ति से वो अंडा फूटकर वो विकसित होता है और बच्चा उसमें से प्रकट होता है। तो बताया जाता है कि एक कछुआ जो इतना निम्न स्तर का पशु है, उनके स्मरण शक्ति में इतना बल है, तो जरा सोचिए मनुष्य के स्मरण शक्ति में कितना बल होगा। तो इसीलिए वो मनुष्य जब अपने स्मरण शक्ति को व्यर्थ ना गवा कर उसे उस स्मरण शक्ति को नारायण के चरणों में अर्पण करना है, तब उसका जीवन वास्तविक धन्य होगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है किसी का? हाँ प्रभु। हाँ, जो ऐसे तिलक लगे हैं वो वास्तविकता में शास्त्र के अनुसार नहीं है। आदि शंकराचार्य के सारे फॉलोवर्स लोग ऐसे तिलक लगाते हैं। अब आदि शंकराचार्य कौन है? स्वयं शिव जी है। स्वयं शिव जी ने आदि शंकराचार्य के रूप में आकर उन्होंने लोगों को भ्रमित किया है। वो भ्रमित कर कर, ताकि ये जितने भी नास्तिक लोग हैं, क्योंकि ये नास्तिक लोग भगवान के भक्तों को भक्ति करने के लिए रुकावट पैदा कर रहे थे, तो आदि शंकराचार्य ने क्या किया, इन लोगों को गुमराह करने के लिए उन्होंने एक ऐसा शास्त्र लिखा और ऐसे आभूषण दे दिए, बोले कि तुम्हारा आभूषण आज से ऐसे ऐसे तिलक लगाओ। और उन लोग सोच लिया वाकई ये ऊपर जो तिलक लगाते हैं मूर्ख लोग हैं, हम लोग बुद्धिमान हैं। लेकिन पता है आदि शंकराचार्य के वास्तविक मूर्ख उन लोग ही है। क्यों? क्योंकि आदि शंकराचार्य चाहते थे कि मैं अपने नारायण की आज्ञा का पालन करूं। तो स्वयं आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ये जगत में जो भी होता है सब मिथ्या है। बताया जाता है एक बार आदि शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ चलते हुए जा रहे थे, तब उस समय एक पागल हाथी आ गया। जब पागल हाथी आया तो इधर उधर देखा और सीधे एक 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 पेड़ में सब चढ़ गए। तो गुरुजी पहले भागा, तो बाकी शिष्य लोग बोले अरे गुरुजी भागे तो हम क्यों नहीं भागे, तो सब भाग गए। फिर जब पागल हाथी चला गया तो सब उतर गया है। तो आदि शंकराचार्य को पूछते उनके शिष्यगण, गुरुजी आप ही तो कहते हैं कि जगत मिथ्या है ब्रह्म सत्य है, तो ये जो पागल हाथी आ रहा था वो तो झूठ था, फिर क्यों भागे आप? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं वो पागल हाथी जो आ रहा था वो झूठ था और मैं जो भागा वो भी झूठ था। तो आप चिंता मत करिए। तो वैसे आदि शंकराचार्य ने लोगों को केवल मूर्ख बनाया ऐसे कहकर, वो वास्तविकता में तिलक जो होता है, तिलक हमेशा ऊपर की गति की ओर होता है, जो ऊपर की ओर हमें लेकर जाता है, ऐसे तिलक नहीं होता, तिलक ऊपर की ओर होता है। इसलिए इस तिलक का नाम है ऊर्ध्व पुंड्र, ठीक है। हरे
प्राप्त किए हैं और बहुत प्रचार करते हैं, विशेषकर कल्याण